श्रीचैतन्य मनोभिस्सं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण सम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाण्ड्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनधारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धान्त दन्तधारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्बर साम्भोये पदाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विमलाय सच्चिदानन्द नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरविर्भाव भूमे स्वं निर्देष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यः च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने भवद्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्ते जयतां सुरतो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्यावृन्दारण्यकल्पद्रुमा श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रील गोविन्द देवो प्रस्थालिभिसेव्यमानस्थानानि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणु स्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तुन तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे
लंबे समय के बाद हम पुनः हमारी जो टूटी हुई श्रृंखला है उसको जारी रखेंगे। तो श्रृंखला की शुरुआत हुई थी हमारे परंपरा के जो एक महत्वपूर्ण वैष्णव आचार्य जिनका नाम था श्रीपाद मध्वाचार्य, हाँ, उनके जीवन चरित्र को लेकर हमने कुछ उनके मूड के बारे में सुना था, कुछ उनके मिशन के बारे में सुना था, कुछ उनके लाइफस्टाइल के बारे में सुना था। तो उसी प्रकार से इस आज की श्रृंखला को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हमारे जो महान इस परंपरा के जो द्वितीय आचार्य हैं, हाँ, प्रमुख आचार्य जिनसे जो चैतन्य संप्रदाय है या श्री चैतन्य महाप्रभु की ये जो धारा है वो अलग हो जाती है, क्योंकि हम श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हैं, है ना, जो ब्रह्मा जी जिसके फाउंडर आचार्य हैं। और आगे चलकर वो जो संप्रदाय है कालक्रम में कुछ कमज़ोर हो जाता है, तो हमने सुना कि किस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की सहायता से अपने इस संप्रदाय की पुनर्स्थापना करते हैं, हाँ, श्रीपद मध्वाचार्य को लाकर। तो श्री ब्रह्म मध्व, और फिर क्या है, हम इतना ही नहीं है, हम क्या है, गौड़ियाज हैं। गौड़ियाज का मतलब है जो गौड़ देश में अवतरित हुए थे। तो गौड़ देश क्या है, बंगाल। हाँ, चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है कि गौड़ दये पुष्पवंतो चित्रो छंदो तमोनुदो, कि गौड़ देश में वहाँ के क्षितिज से दो भाई अवतरित हुए, प्रकट हुए सूर्य के समान, जिनका नाम था गौर निताय। तो चैतन्य महाप्रभु और जो सन्यासियों के जो शिरोमणि हैं नित्यानंद प्रभु, ये अवतरित होते हैं। और जो तमोनुदो, ये जो जगत अंधकार से ढका हुआ था, तो ये दोनों भाई प्रकाश से क्या करते, उदित कर देते हैं। तो इन्हीं का जो जो आचार्याज है या इनके जो संगी हैं, हाँ हाँ, क्योंकि हम देखते हैं शास्त्रों के द्वारा कि जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो वो अकेले आते नहीं हैं, है ना। तो जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे, राजा आ रहा है, उसका मतलब कि वो राजा अकेला नहीं आ रहा है, उनके साथ क्या है, उनकी सारी सेना है, रानियां हैं, फिर उनके पार्षद हैं, कमांडर्स हैं, मंत्रीज हैं, हाँ, कई सारे लोग। राजा का मतलब अकेला राजा नहीं, राजा आ रहा है मतलब कई सारे लोगों के साथ आता है, वो अकेला नहीं आता कभी। तो उसी प्रकार चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो वो अकेले अवतरित नहीं होते, है ना, वो क्या करते हैं, साथ साथ अपने जो भक्त हैं, हाँ, उनको भी ले आते हैं अपने साथ कई प्रकार की लीलाओं के लिए। तो आज के जो आचार्य है जिनका नाम है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, हाँ, जो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी है, इनकी जो ये लीला कथा है हमारे गुरु महाराज जिजोलीनाथ गोपाल कृष्ण महाराज को बहुत प्रिय है, तो हमेशा माधवेंद्रपुरी के इस उपाख्यान का वर्णन करते हैं और ये बताते हैं कि किस प्रकार से एक भक्त, हाँ, कृष्ण की सेवा के लिए कितनी भी कठिनाई सहन करता है। हाँ, भक्तिरण ठाकुर कहते कि हे कृष्ण, जब तक आपकी सेवा में कष्ट ना मिले तब तक आनंद नहीं आता आपकी सेवा करने में, कि आपकी सेवा में मुझे और कष्ट मिल रहा है तो और सेवा का उत्साह बढ़ता है और आनंद आता है आपकी सेवा करने के लिए। हाँ, जैसे कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के जीवन से ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। इनके जीवन में कई प्रकार की शिक्षाएं हम देख सकते हैं। इनका मिशन क्या है कि भगवान के प्लेजर के लिए हर एक कार्य, हर एक सेवा करने के लिए वो तैयार होते हैं, केवल कृष्ण आनंद प्रदान करने के लिए। हाँ, और मूड इनका क्या था, ये विनम्र थे। हाँ, बल्कि आप देखेंगे आगे कि कृष्ण ने स्वयं इनके लिए खीर का बर्तन चोरी किया था, तो लेकिन इनमें घमंड नहीं आया कि देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, भगवान मेरे लिए खीर चोरी कर रहे हैं। आप जानते हैं कृष्ण का सबसे फेवरेट है स्वीट राइस, सबसे अच्छी स्वीट कोई लगती है कृष्ण को तो वो स्वीट राइस खाते हैं, हाँ, खीर। तो कहा जाता है कि कार्तिक के दिनों में व्यक्ति को स्वीट राइस ऑफर करना चाहिए डेली कृष्ण को, उनको प्रसन्न करना है तो, हाँ, तो स्वीट राइस इतना भगवान ने उनके लिए चोरी किया, लेकिन उनके अंदर ये घमंड नहीं आया, नहीं तो हमारे लिए कोई कुछ कर दे, हाँ, कोई भक्त या महाराज हमारे लिए कोई बुला ले, बस हमें इतना ही रहता है कि हम अपने आप को अलग महसूस करते सब में, किसी आम से छुपे डिवोटी का कि महाराज मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, मुझे फोन कर रहे हैं कि नहीं, तो ईगो आता है। तो लेकिन माधवेंद्र पुरी जो स्वयं कृष्ण उनके लिए सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, हाँ, लेकिन नहीं ऐसे ये जो आचार्य है और इनका लाइफस्टाइल क्या है, लाइफस्टाइल एक ही है उनका कि वो बहुत ही विरक्त सन्यासी थे, विरक्त, कोई अटैचमेंट, कोई जो अटैचमेंट है किसी चीज़ के प्रति उनको नहीं था। तो इसका वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से चैतन्य चरितामृत में करते हैं। परम विरक्त मौनि सर्वत्र उदासीन, ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संगहीन। तो ये क्या है इनका कि ये मौन रहते थे, मौन का मतलब है कृष्ण कथा के अलावा और चर्चा नहीं करते थे भगवान से संबंधित। तो आप कहेंगे कि नहीं अभी कृष्ण की लीला है तो बात नहीं कर रहे हम आपस में, हाँ ये तो कई बार कई सोच सकते ना, कृष्ण कथा करनी है तभी हम बात करेंगे, हाँ भक्त। तो कृष्ण कथा करने का मतलब है, एक तो है कृष्ण की कुछ कथाओं का वर्णन, उनके दर्शन जो भगवान ने दिया है उनका चर्चा, और है कृष्ण की सेवा से संबंधित जो चर्चा है वो भी कृष्ण कथा है, हाँ जैसे फेस्टिवल है, अरेंजमेंट करना कृष्ण जन्माष्टमी फेस्टिवल का, तो उसके संबंध में चर्चा करना कैसे अरेंज करें, ये सेवा कैसी होनी चाहिए, ये भी कृष्ण कथा है। आप देखेंगे माधवेंद्र पुरी के जीवन में कि किस प्रकार उन्होंने गोपाल जी के लिए फेस्टिवल अरेंज किया था, हाँ गोवर्धन में, तो कितनी बड़ी बड़ी अरेंजमेंट माधवेंद्र पुरी ने की थी। तो इस प्रकार से ये सब कृष्ण कथा है, और माधवेंद्र पुरी का एक गुण था कि परम विरक्त और विरक्त थे, डिटैचमेंट था उनको इस भौतिक जगत के कार्यकलापों से और भौतिक चीज़ों से, और एक ही उनका आकर्षण था वो यही था कि वो कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे। तो जहाँ भगवान की चर्चा, भक्त की चर्चा होती है उनके साथ साथ भगवान की चर्चा होती है, क्योंकि दोनों चर्चाएं कभी अलग अलग नहीं कर सकते आप, जब भी भक्त की बात कर रहे हो तो उसके बीच क्या आ जाता है, भगवान। तीन चीज़ें हैं इस जगत में जो दिव्य हैं, एक है भक्त, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन एक है भक्त, दूसरा है भगवान, और उन दोनों के बीच का जो आदान प्रदान वो क्या है, क्या कहते हैं उसको, भक्ति। तो ये तीन चीज़ें हैं बहुत दिव्य हैं इस संसार में, कि भक्त भगवान और दोनों के बीच का आदान प्रदान। तो जो चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु कौन है जानते हैं आप, स्वयं
स्वयं कृष्ण राधा रानी के बाबा,
और कौन है चैतन्य महाप्रभु? प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में प्रश्न पूछा था, हु इज लॉर्ड चैतन्य, तो कई कुछ कहने लगे, हाँ तो प्रभुपाद कहते इज कृष्णा हिमसेल्फ, वो स्वयं कृष्ण है, वो आए कृष्ण के अवतार नहीं, कोई कहने लगा कृष्ण के इनकारनेशन है चैतन्य महाप्रभु, नहीं, महाप्रभुपाद ने कहा वो स्वयं कृष्ण है। तो वो कैसे कृष्ण है कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, के भगवान श्री चैतन्य देव वो राधा कृष्ण से अभिन्न है, और जब भगवान सोचते हैं, चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने या भगवान कृष्ण ने सोचा कि मुझे अभी अवतरित होना है, तो वह वर्णन करते हैं काफी प्यारों में, कृष्ण जदि पृथ्वी ते करे न अवतार, प्रथम करे न गुरु वर्गे संचार। जैसे राजा आने वाला होता है तो पहले वह अपने लोगों को भेजता है, जाओ अरेंजमेंट करो, जैसे हमारे मंदिर का ओपनिंग था 98 में, तो प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे अटल बिहारी, तो पहले उन्होंने अपने लोगों को भेजा, उसके बड़े बड़े कुत्ते आए, पुलिस आए, सब आए, यहाँ पूरा आश्रम में रोबोटिक हॉल में म्यूजियम सब जगह, कुत्ते टेम्पो सब जगह ले जाकर ये कर दिया, क्या कर दिया, सुरक्षा का प्रबंध किया, और मतलब अरेंजमेंट की उनके आने की। तो उसी प्रकार जब भगवान भी आते हैं तो भगवान आने से पहले हाँ अरेंजमेंट करने के लिए भेजते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में कहते हैं प्रथम करे न गुरु वर्गेरा संचार, कि भगवान आने से पहले आपने जो गुरु वर्ग हैं, भगवान से जो बढ़कर हैं, वो कौन है? उनके माता पिता हैं, उनके गुरु हैं, उनके जो भगवान किसी को ना किसी को गुरु स्वीकार करेंगे, पहले उनको भेजते भगवान। पिता माता गुरु आदि जत मान्य गण प्रथमे करे न सबार पृथ्वी ते जनम। तो फिर इन सबका पृथ्वी में इनको भेज देते हैं भगवान, ताकि बाकी सारे अरेंजमेंट करे। और एक दिन भगवान ने ये इच्छा व्यक्त की ब्रजेंद्र कुमार, ब्रजेंद्र कुमार मीन्स कृष्ण, तो कृष्ण ने एक इच्छा व्यक्त की कौन वांछा पूर्ण लागी ब्रजेंद्र कुमार अवतीर्ण है ते मने करेला विचार। तो एक दिन कृष्ण ने सोचा कि मुझे अभी अवतरित होना है, क्योंकि उनकी कई इच्छाओं की पूर्ति करनी थी कृष्ण को, जिसके कारण वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो ऐसा सोच ही रहे थे तो भगवान ने क्या किया, आगे अवतरिला जे गुरु परिवार संक्षेपे कहिए कहा ना जाए विचार। तो भगवान ने अपने लोगों को भेजा, हाँ तो उन लोगों में नाम आता है श्री सच्ची जगन्नाथ श्री माधवपुरी। हाँ श्री सच्ची जगन्नाथ श्री माधवपुरी, श्री सच्ची, सच्ची कौन है? चैतन्य महाप्रभु की मदार। और श्री जगन्नाथ मिश्र वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु के पिता, पिताश्री। और फिर अपने गुरु, गुरु के जो गुरु हैं ये श्री माधवपुरी। तो माधवेंद्रपुरी को श्री चैतन्य महाप्रभु भेजते हैं, और ताकि आगे जाकर जो भगवान के आने के जो अरेंजमेंट है वो करे। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान को अपने भक्तों से कितना बड़ा अधिक प्रेम है, हाँ कितने प्रिय हैं। हाँ तो एक बार एक व्यक्ति ने सुना कि भगवान का एक नाम यह है दीन बंधु, है ना, दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ की है दीन बंधु। किसने सोचा कि कृष्ण का नाम दीन बंधु है? दीन बंधु का मतलब है जो दुखियों के मित्र, है ना, करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, हाँ इसमें भी है दीन बंधु जगत। तो दीन बंधु का मतलब ही है जो दुखी है, हाँ उनके बंधु है। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि तो इतने मैं तो सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति हूँ, तो ये मेरे मित्र है, तो ऐसे मित्र के पास मुझे जाना चाहिए। तो बड़े उत्साह के साथ सारी अरेंजमेंट करके, इतना सब जगह से उसको थप्पड़ मिल रही थी संसार में, सब जगह से फ्रस्ट्रेशन था, जो भी योजना बनाता था वो कोलैप्स हो जाते थे, मतलब पूरी तरह से उसका ग्राइंडिंग मशीन में डाल के जैसे पीसते हैं छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो वैसे ये भौतिक जगत में पिस रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि कृष्ण दीन बंधु है, मुझे उनके पास जाना है, हाँ क्योंकि वो मेरा दुख समझ सकते हैं, हाँ उनका उनकी शरण ग्रहण करनी है। तो आते हैं और तब उनको पता चलता है कि वो दीन बंधु तो है अभी नहीं है, अभी क्या है वो भक्त वत्सल है, हाँ कि वो भक्तों के प्रति ज्यादा स्नेही है, हाँ उनका ज्यादा प्रेम है। तो कहे वो सोचने लगा फिर मैं तो भक्त नहीं हूँ, तो कैसे भगवान की मुझे कृपा मिलेगी, है ना। हाँ तो उस फिर उसने सोचा कि अभी मुझे भक्त बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, भक्त बनना चाहिए, तब फिर कृष्ण की कृपा दृष्टि मुझे मिलेगी। तो इस प्रकार से वो भगवान का भक्त बन जाता है। तो इसी प्रकार जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वो जब आते हैं तो साथ साथ अपने भक्तों को लेकर आते हैं या अपने भक्तों को भेजते हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है वो इतनी दिव्य है, क्यों दिव्य है, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलता। कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में कोई व्यक्ति थोड़ा भी सुन लेता है ना, तो उसका हृदय बिल्कुल तीव्रता से शुद्ध होने लगता है। हाँ हाँ इसलिए कहते कि इतनी शक्तिशाली है लॉर्ड चैतन्य के पास टाइम। बल्कि कृष्ण लीला बड़ी टफ होती है, हमें अनुरागी नहीं है। हाँ मैं अपना अनुभव बताता हूँ, मुझे तो बड़ा ये लगता है कृष्ण लीला तो, लेकिन महाप्रभु की लीला सुनते हैं तो लगता है कि हाँ अभी कुछ है हमारे लिए, मतलब होप है, होप। कृष्ण लीला सोचते हैं कि अभी होप नहीं है, इतने सारे दिव्य एक्टिविटीज हम तो उसके उसके लिए नहीं है। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु की दिव्यता को सुनते हैं, उनकी कृपा को सुनते हैं, तो लगता है कि हाँ मेरे लिए कुछ आशा है, अभी मेरा भी उद्धार हो सकता है। हाँ कृष्ण लीला को पढ़ते तो नहीं, वहाँ तो सीधा मार ही देते हैं। कृष्ण क्या करते हैं कृष्णा बुक में, वो कोई दया नहीं, सब आसुरों को बिल्कुल हाँ उनका हरि बोल कर देते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला में जब हम आते हैं तो वहाँ दिन हीन जत छिलो हरि नामे उद्धारिलो तार साक्षी जगाए मदाए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते दीनहीन पतित कितना भी नीच क्यों ना हो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार करते हैं और इसके साक्षी कौन है, जगाए और मदाए। तो ये जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि मैं तो जगाए मदाए से भी ज्यादा नीच हूँ। हाँ क्योंकि जगाए मदाए ने कभी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं किया था। हाँ ये एक योग्य गुण था जब महाप्रभु और नित्यानंद ने उन पर दया की थी, क्या कि वैष्णव के प्रति उनका कभी उन्होंने ये नहीं किया, अपराध नहीं किया है। इस कारण तो उसी समय बस वही था पहला। हाँ ऐसे ने तब, बल्कि हम क्या है, हम उनसे ज्यादा नीच हैं कि हम भक्त हमारे लिए। हाँ तो हम ये समझ सकते हैं कि मेरा तो हो, मैं तो उद्धार मेरा हो ही नहीं सकता जब मैं महाप्रभु की शरण नहीं ग्रहण करूंगा, उनके बारे में नहीं सुनूंगा या उनको सर्व नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि महाप्रभु की ये जो दिव्य लीलाएं हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। कोई भी व्यक्ति एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनता है तो उस व्यक्ति का हृदय शुद्ध होने लगता है। और कोई भी व्यक्ति ये बात जान लेता है, क्या बात, गौरांगेर संगी गने नित्य सिद्ध करी माने, कि गौरांग महाप्रभु के जो संगी हैं, जैसे माधवेंद्रपुरी किसके संगी है, श्री चैतन्य महाप्रभु के। तो ये प्रगाढ़ फेथ हमें डेवलप करना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जो एसोसिएट्स हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो केवल महाप्रभु के एसोसिएट मीन्स महाप्रभु के साथी थे नहीं, वहां तक नहीं, अभी भी चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट्स है। हाँ भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद और जो हमारे वर्तमान गुरु वर्ग है, आचार्याज है, अभी भी जो वैष्णवाज है, वो भी किसके एसोसिएट्स है, श्री चैतन्य महाप्रभु के। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ये सावधान करते हैं कि आपको ये जान लेना चाहिए और आपको ये फेथ विकसित करना चाहिए कि गौरांगेर संगी गने नित्य सिद्ध करी माने से जाय ब्रजेंद्र सुत पाश। तो जो व्यक्ति ये जानता है कि मेरे जो गुरुदेव हैं वो कोई ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं है। हाँ क्योंकि हमें टेंडेंसी क्या है कि हम वैष्णवों को या जो गुरु है उनको सामान्य समझने लगते हैं, क्या करते हैं, सामान्य समझते, ऑर्डिनरी लेते हैं। वो भी तो खाते हैं, जैसे कई बार देखते हैं गुरुदेव भी तो मंगल आरती आना पड़ता है उनको। हाँ उनको भी तो भौतिक रूप से देखते बीमारियाँ होती हैं या फिर है ना कई। तो इस प्रकार से जब कोई भी व्यक्ति या शिष्य इस दृष्टि से देखता है तो उसका पतन होना शुरू हो जाता है, चेतना से सूक्ष्म लेवल से फिर फिजिकल लेवल पर आता है। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर यागा करते हैं कि आप सबसे पहले उनके बारे में जानने से पहले ये समझ लो कि ये जो वैष्णवाज है ये कोई सामान्य वैष्णवाज नहीं है, ये कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य संगी है। तो इस प्रकार से जो माधवेंद्रपुरी है वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु के एक महत्वपूर्ण पार्षद थे और जिनके बारे में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके चरित्र का वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में किया है। हाँ वर्णन आता है कि जो माधवेंद्रपुरी है वो श्री रंग क्षेत्र में उन्होंने जन्म लिया था। हाँ उनके पिता का नाम था गोविंद भट्टाचार्य और उनकी मदर का नाम था श्री रंगा देवी। तो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है बचपन की और किसी भी चीज़ की, लेकिन हमारे जो गौड़ी आचार्यज है उन्होंने माधवेंद्रपुरी का जो जीवन चरित्र है दो ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिलता है। एक है श्री चैतन्य चरितामृत में, बहुत विस्तार से आप पढ़ सकते हो, और दूसरा है श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत जो ग्रंथ है चैतन्य भागवत, इसमें श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के बारे में जानने को हमें मिलता है। तो कई वर्णन आता है अनेक अनेक स्थानों में कि ये अवतरित हुए थे 14th century में, जो माधवेंद्र पुरी हैं। और ये मध्वाचार्य की परंपरा में हम देखते हैं, मध्वाचार्य की जो परंपरा है उसमें जो लक्ष्मीपति, हाँ लक्ष्मी तीर्थ या लक्ष्मीपति जो एक आचार्य आते हैं परंपरा के, उनके ये शिष्य थे, हाँ श्रीपद माधवेंद्र पुरी। और माधवेंद्र पुरी ने कई और महान महान वैष्णवों को दीक्षा दी थी, हाँ क्योंकि माधवेंद्र पुरी बंगाल उड़ीसा और दक्षिण भारत के कई स्थानों में भ्रमण करते थे और साथ साथ प्रचार भी करते थे और अपने भक्त शिष्यों के साथ, हाँ जैसे कि चैतन्य महाप्रभु उनके बारे में कहते हैं कि हाँ ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संगहीन, हाँ कई बार वो अकेले ट्रैवल करते थे, हाँ क्यों करते थे कई बार, क्योंकि उनको डर लगता था कि मैं किसी को अपने साथ ले लूँगा तो वो प्रजल्पा ना करें, हाँ ग्राम्य वार्ता, इसलिए वो अपने साथ कई बार नहीं लेते थे किसी को, हाँ उनके जो विश्वसनीय भक्त थे उनको अपने साथ रखते थे, ये डर इस कारण भी वो दूसरों से संगहीन थे, हाँ ग्राम्य वार्ता भय, हाँ इस प्रकार से इनका आचरण था। और श्रीपद मध्वा जो माधवेंद्र पुरी है, हाँ इनकी इन्होंने कई शिष्य बनाए, आप आगे चलकर जब पढ़ेंगे कई ग्रंथों को तो उसमें वर्णन आता है कि जो पुंडरिक विद्यानिधि है, आपने सुना है ना पुंडरिक विद्यानिधि, उनको भी श्री चैत्य माधवेंद्र पुरी पाद ने दीक्षा दी थी और अद्वैत आचार्य को भी माधवेंद्र पुरी जी ने दीक्षा दी थी। फिर वर्णन आता है उनके जो फेवरेट सबसे प्रिय शिष्य थे जिनका नाम क्या है, ईश्वरपुरी, हाँ वो उनके शिष्य महत्वपूर्ण थे। और परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, श्री रंगपुरी, जिनका वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है। तो कई जो ऑथर्स हैं अलग अलग ग्रंथों के, वो वर्णन करते हैं कि नित्यानंद प्रभु को भी इन्होंने दीक्षा दी थी, लेकिन कई ऑथर वर्णन करते हैं कि जो लक्ष्मी तीर्थ है उनसे नित्यानंद प्रभु ने दीक्षा ली, और थर्ड ऑथर नित्यानंद दास जो प्रेम विलास जिन्होंने लिखा है वो कहते हैं कि ईश्वरपुरी ने नित्यानंद प्रभु को दीक्षा दी। तो कई अलग अलग जो वैष्णवाज है उनका अलग अलग मत है, तो लेकिन मेनली ये जाना जाता है कि नित्यानंद प्रभु ने श्रीपाद माधवेंद्र पुरी से दीक्षा ली थी और वो अपने गुरु के समान, चैतन्य भागवत में आता है कि गुरु के समान आदर देते थे, लेकिन क्लियरली वर्णन नहीं है वहाँ। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि जब माधवेंद्र पुरी दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे और उसी समय श्री नित्यानंद प्रभु भी भारत का भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने बचपन में ही अपने पिता का घर छोड़ा था, नित्यानंद प्रभु ने एक सन्यासी उनको ले गए थे और नित्यानंद प्रभु अकेले भ्रमण करते थे। तो एक स्थान में दक्षिण भारत के एक स्थान में नित्यानंद प्रभु माधवेंद्र पुरी से मिलते हैं और माधवेंद्र पुरी को देखकर नित्यानंद प्रभु पागल हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, हंसने लगते हैं उनको देखकर, क्योंकि माधवेंद्र पुरी के जो प्रेम है, माधवेंद्र पुरी का जो शरीर है और उनका जो उनका जो बिहेवियर था उससे पता चलता था कि माधवेंद्र पुरी के हृदय में कृष्ण के लिए कितना प्रेम है ना। जैसे कई बार हम कितने वैष्णवों को मिलते हैं और देखते हैं तो महसूस होता है हमें, है ना, जैसे हमारे महाराज नज़दीक भी आ जाते हैं तो लगता है कि कुछ शौक लग रहा है, हाँ क्योंकि कृष्ण एनर्जी इतनी है उनके हृदय में, क्या है कृष्ण एनर्जी, तो लगता है हाँ दूरी है तो हमें यहाँ ये होता है ना जॉय महसूस होता है कि नहीं। जैसे प्रभुपाद के शिष्य भी कहते हैं कि प्रभुपाद दूरी दिखाई देते थे तभी इनको पूरा एक प्रकार से कृष्ण के प्रति अनुराग उनके हृदय में विकसित होता था और सारे जो भक्त हैं वो नाचते थे पागल की तरह प्रभुपाद को देखने की मात्रा से, हाँ भावीवल हो जाते थे। प्रभुपाद एयरपोर्ट के दरवाजे से बाहर आते थे तो भक्त नाचते थे, कूदते थे, दंडवत लगाते थे, हाँ कितना ये करते थे उत्साह से। ये क्यों होता है, क्योंकि जब देखते हैं कृष्ण शक्ति का ये प्रभाव, हाँ कृष्ण शक्ति का एक प्रभाव जो उस वैष्णव में है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो उसी प्रकार माधवेंद्रपुरी क्या क्या कहा गया है उनको, माधवेंद्रपुरी प्रेममय कलेवर प्रेममय जत सब संगे अनुचार। तो माधवेंद्रपुरी का जो शरीर है वो पूरी तरह से प्रेम से पूरित था, मतलब कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है वो बहुत ज्यादा प्रगाढ़ था, घनिष्ठ था। प्रेममय जत सब संगे अनुचर, और उनके साथ भी जो उनके शिष्य थे या भक्त थे वो भी सारे ये थे, कृष्ण के प्रति आसक्त थे बहुत ज्यादा मात्रा में। और वो कहते कि उनका भोजन क्या था, कृष्ण रस बिनुआर नाहिक आहार माधवेंद्र पुरी देह कृष्ण विहार। कि कृष्ण रस के अलावा उनका कोई और भोजन नहीं था। मुकुटमाला स्तोत्र दीजिए जरा एक बार। तो माधवेंद्र पुरी का जो भोजन है वो कृष्ण रस था। तो कृष्ण रस क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माधवेंद्र पुरी इस कृष्ण रस में हर समय निमग्न रहते थे, और उनको कोई और चीज के प्रति कोई रति नहीं थी। जैसे कि छह गोस्वामी हैं, छह गोस्वामियों का भोजन क्या था, कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो, कृष्ण का कीर्तन करना, कृष्ण के लिए नृत्य करना, तो ये उनका आहार था। और इसलिए ये जो वैष्णवाज है, क्योंकि ऐसे नहीं कि उन्होंने जानबूझकर फूड कम कर दिया था खाना, नहीं, उनका बॉडी क्या है, संतुष्ट था। क्योंकि आत्मा आत्मा को चाहिए ना संतुष्टि। क्या वो भागवतम का एक श्लोक आता है, तो उसी प्रकार से जो माधवेंद्र पुरी है वो भी पूर्ण रूप से कृष्ण रस का पान करते थे। और वर्णन करते हैं वृंदावन दास ठाकुर कि उनके हृदय में या उनके पूरे शरीर में कृष्ण वास करते थे। और चैतन्य महाप्रभु भी उनके बारे में कहते हैं, बार बार श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे भक्ति रसे माधवेंद्र आदि सूत्रधार। किस परंपरा में सबसे पहले किसी ने राधा कृष्ण के प्रति प्रेम की जो प्रेम की जो वार्ता या प्रेम रस की जो चर्चा है या उसका जो प्राकट्य किसी ने किया है इस संप्रदाय में, तो वो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी थे। अन्यथा मध्वाचार्य के जो संप्रदाय है उनका लक्ष्य क्या है, मुक्ति पाना। मध्वाचार्य के जो फॉलोअर्स आते हैं माधवेंद्र पुरी तक, तो उनका यही है कि वैकुंठ जाना। लेकिन श्री जो माधवेंद्र पुरी है उन्होंने कौन सी बात की आकर, गोलोक धाम की चर्चा की है। और श्री राधा कृष्ण का जो प्रेम व्यापार है उसका वर्णन किया है, और इस बात को बताया है कि किसी एक जीव का यही जो सर्वोच्च जीवन लक्ष्य है, तो इसका जो स्थापना है माधवेंद्र पुरी ने की है। और इसी कारण वो बार बार इस रस में अनुरक्त थे। जैसे कि मुकुंदमाला स्तोत्र में आता है राजा कुलशेखर कहते हैं, इदं शरीरं परिणाम पेशलं पतत्यवशं शतसंधि जर्जरं किमौषधं पृच्छसि मूढ दुर्मते निरामयं कृष्ण रसायनं पिबम। तो यहाँ भी कृष्ण रसायन की बात करते हैं राजा कुलशेखर। वो कहते कि इदं शरीरं परिणाम पेशलं, कि अरे ये मूर्ख व्यक्ति कि जो शरीर तुम लेके बैठे हो, जिसका तुम श्रृंगार कर रहे हो, जिस बॉडी को तुम डेकोरेट करते हो, जिसके मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो, तो वो शरीर क्या होने वाला है, परिणाम पेशलम, ये तो शरीर खत्म होने वाला है। और पतेति अवशम शतसंधि जर्जरम, कि ये जो शरीर है ये विनष्ट होने वाला है। और शतसंधि जर्जरम, इस शरीर के जो हड्डियाँ के जॉइंट्स हैं वो क्या होने वाले हैं, आवाज करने वाले हैं, बजने वाले हैं, मतलब पेन करने वाले हैं एक दिन। तो कहते तुम क्यों नहीं पूछते हो किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते, अरे मूर्ख व्यक्ति तुम किसी औषध को क्यों नहीं पूछते हो, मेडिसिन को क्यों नहीं पूछते कि इसका मेडिसिन क्या है। हाँ तो इसका मेडिसिन क्या है, निरामयम कृष्ण रसायनम पिबम, कि व्यक्ति को निरंतर जो कृष्ण रसायन है उसको पीना चाहिए। हाँ कृष्ण रसायन टॉनिक। हाँ तो कृष्ण रसायन क्या है भक्तों के लिए, कि भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में चर्चा करना, भगवान की सेवा में लगे रहना, ये टॉनिक है। हाँ और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो जब नित्यानंद प्रभु पहली बार माधवेंद्रपुरी से मिले तो वो एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हुए और फिर दोनों ने एक दूसरे के गले में गला डाला और रोने लगे नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी, और एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे। कैसे तो दोनों अलग हुए और रोते ही जा रहे थे, कुछ दिन दोनों एक साथ रहे और फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा कि देखो मैंने तो कितना भ्रमण किया। नित्यानंद प्रभु जितना ज़्यादा भ्रमण किया है उतना चैतन्य महाप्रभु ने भी भ्रमण नहीं किया, ना किसी ने। नित्यानंद प्रभु बंगाल से लेकर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली, दिल्ली में आए थे नित्यानंद प्रभु, दिल्ली से फिर मथुरा वृंदावन गए, वृंदावन से इलाहाबाद बिहार होते हुए उड़ीसा जगन्नाथपुरी होते हुए फिर से नवद्वीप गए, तब महाप्रभु को मिले। तो जब वो दक्षिण भारत गए थे तब माधवेंद्रपुरी से मिले थे और उन्होंने काफ़ी, दक्षिण भारत में तो सबसे ज़्यादा तीर्थ हैं, स्थान हैं छोटे छोटे, तो वहाँ उन्होंने काफ़ी सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया और इतना सारा भ्रमण करने के बाद भी इस कंक्लूजन पर पहुँचे, क्या नित्यानंद बोले जत तीर्थ करिलाय सम्यक तहार फल आज पाइलाय, कि मैंने जितना भी भ्रमण किया है उसका फल मुझे आज मिल रहा है। क्या ये फल, नयने देखिनु माधवेंद्र रचरान ये प्रेम देखिया धन्य है लजीवन, कि इतना सारा भ्रमण करने का फल क्या है कि आज मैं आप जैसे जो शुद्ध भक्त हैं, हाँ जिनका जिनके हृदय में कृष्ण के लिए असीम प्रेम है, हाँ हाँ उनका मैंने दर्शन किया है या उनके चरणों का दर्शन किया, यही मेरे तीर्थ यात्रा का फल है। हाँ तो कई बार हमें लगता है कि हमें काफ़ी भ्रमण करना चाहिए अलग अलग तीर्थों में, तो नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में डांट लगाते हैं, वो कहते हैं तीर्थेर भ्रमण केवल मनेर भ्रम, कि तीर्थों का भ्रमण करना ये केवल अपने मन का भ्रम है। कहते गोविंद चरण, वो मुझे प्यार याद नहीं है, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि सर्व सिद्धि है गोविंद चरण। यदि तीर्थों का भ्रमण करने के बाद भी, क्योंकि तीर्थों का भ्रमण क्यों करते हैं, हम क्यों जाते हैं बताइए, वृंदावन या अनग अनग तीर्थों में क्यों जाते हैं, साधु सांग तीर्थों का, हाँ ये तो भागवतम कहता है यदि कोई तीर्थ स्थानों में जाता है केवल डुबकी लगा देता है घूमता है और आता है, तो उस व्यक्ति की तुलना एक गाय से और एक कौवे से की जाती है। हाँ क्योंकि कौवा भी उसी प्रकार से हो जाता है, डुबकियाँ लगाता है और आता है, लेकिन तीर्थों में जाते हैं तो प्रभुपद बहुत स्ट्रिक्ट है कि जाकर साधु को ढूंढो और साधु का संग करो, उनसे पूछो उनसे सुनो, हाँ तभी तीर्थ यात्रा करने का लाभ है। अन्यथा क्या है, सर्व सिद्धि गोविंद चरण, सारी सिद्धि गोविंद के चरण में है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु कहते कि मैंने इतना भ्रमण किया ये तो इसका फल कुछ भी नहीं है, इसका फल क्या मिला आज कि आप जैसे वैष्णव के मेरी मुलाकात हुई, हाँ आपका दर्शन हुआ। हाँ क्योंकि दर्शन है पवित्र कर ये तो हमारा गुण, तो भक्तों को मिलते हैं उनको देखने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा इस चीज़ के लिए उत्तेजित नहीं होना चाहिए, हमें ज़्यादा लालायित होना चाहिए किस चीज़ के लिए, साधु संघ के लिए। हाँ इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि लोभ साधु संगे हरि कथा, कि व्यक्ति को ग्रिड डेवलप करना ही है, लालच है हमारे अंदर बहुत चीज़ों के लिए, हमें अपनी ग्लोरियस के लिए अपनी ग्लोरी फैलाने में लालच है, और चीज़ें इकट्ठा करने में लालच है, कई चीज कई प्रकार से हम लालच देख सकते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ये जो ग्रिड है ये एक छः शत्रुओं में से एक शत्रु है, लेकिन इसको भी आप कृष्ण की सेवा में लगा सकते हो। कैसे? हाँ, लोभ साधु संगे हरि कथा, कि जो लोभ है वो दो चीजों में होना उत्पन्न करो। एक है साधुओं का संग, साधुओं का संग मीन्स क्या? हाँ, साधु का संग मीन्स हरि कथा। तो जो साधु कृष्ण के बारे में नहीं चर्चा करता तो वो साधु नहीं है। हाँ, तो साधु का ये मेन गुण है कि साधु क्या करता है? कृष्ण कथा करता है। हाँ, उसका अनुराग भगवान नाम में होता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो वो साधु का ये प्रमुख लक्षण है। तो नित्यानंद प्रभु अपने स्वयं के आचरण से ये सिखाते हैं कि देखो मैंने इतना भ्रमण किया लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। और ऐसा ही वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। हाँ, जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ है ना, विदुर जी चले गए थे और विदुर जी सारे तीर्थों का भ्रमण करके वापस आते हैं और युधिष्ठिर महाराज अपने पांडवों के साथ उनको रिसीव करते हैं। तो फिर युधिष्ठिर कहते हैं तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी स्वांतस्तेन गदावृथा, कि आपने तो तीर्थों का भ्रमण इसलिए किया है कि आप जैसे वैष्णव तीर्थों को जाकर पवित्र करते हैं। तीर्थ अपने आप में पवित्र नहीं है। तीर्थ पवित्र क्यों है? क्योंकि वह वैष्णवाज निवास करते हैं, वहाँ महान साधुज हैं। जैसे प्रभुपाद जब कुंभ मेला गए थे 76 या 77 में, तो प्रभुपाद ने कहा हम यहाँ कोई स्नान करने नहीं आए हैं, हाँ, या फिर यहाँ कोई मुक्ति प्राप्त करने नहीं आए हैं, हम पहले से ही मुक्त हैं। प्रभुपाद ने कुंभ मेला में बोला कि हम तो मुक्त, वी आर लिबरेटेड। आपने शिष्यों को भी बोला, बल्कि प्रभुपाद बहुत ठंड थी और वैसे प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो प्रभुपाद नदी में नहीं जाते थे स्नान करने, वहाँ नल का पानी लेते थे, वहाँ से स्नान करते थे। तो किसी शिष्य को कहता प्रभुपाद हाँ ये तो अमृत गिरता है उस समय उस त्रिवेणी में, वहाँ जाना चाहिए स्नान करने के लिए, आप तो हमें कह रहे हैं कि आप प्रभुपाद नल से स्नान करते थे, और कई शिष्यों को कहते आप भी स्नान करो, तो कहते नहीं हम यहाँ कुछ इस प्रकार का ये बात करने नहीं आए, स्नान लेने नहीं आए हैं, हम तो लिबरेटेड हैं, हम दूसरों को मुक्त करने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ, क्योंकि जो भक्त है वो मुक्त क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। मुक्ति स्वान्यता रूपम स्वरूपेन व्यवस्थिति, कि मुक्ति का मतलब प्रभुपाद कोट करते हैं कि स्वरूप में स्थित हो जाना। तो जीव का स्वरूप क्या है? हाँ, बस आप जितनी भी पढ़ेंगे बुक्स प्रभुपाद लेक्चर, आपको वापस आना पड़ेगा इस पॉइंट पर कि रियली मुझे क्या बनना है? सेवक, सेवकों का सेवक। हाँ, कल के लेक्चर में भी यही था, प्रभुपाद आखिरी में चर्चा कर रहे थे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हम तो यहाँ मुक्त करने आए हैं, हाँ, लोगों को, हम तो मुक्त हैं। तो जो भक्त है वो तीर्थों को पवित्र करने जाते हैं, क्योंकि भक्त पवित्र होते हैं। क्यों पवित्र होते हैं? हाँ, स्वांतस्तेन गदावृता, गदावृता में जिन्होंने गदा धारण की है उनको अपने हृदय में धारण करते और चलते हैं। तो चलते बोलते तीर्थ स्थान है, कौन है? वैष्णवाज है, भक्त है। तो इसलिए भक्तों की ग्लोरीज को समझना चाहिए और उनके एसोसिएशन के लिए लालायित होना चाहिए। और जिस डिवोटीज ने ये साधु संघ के लिए ईगरनेस लालच डेवलप किया है, हाँ, क्योंकि वो उन्नति करने लगते, तीव्रेना भक्ति योगे न, हाँ, क्योंकि भक्ति का जन्म मूल क्या है? हाँ, साधु संघ इज द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति, प्रभुपाद कहते चैतन्य चरितामृत में कि साधु संघ जो भक्ति का जन्म स्थान है, साधु संघ इज द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति। तो इसलिए ये जानना आवश्यक है, क्योंकि जो भक्ति है वो अकेले रहकर नहीं कर सकते। हाँ, भक्ति कैसे होती है? भागवतम कहता है भक्तिस्तु भगवत भक्ता संगे न परिजायते, भक्तिस्तु कि किसी भी व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए, कैसे? संगे न परिजायते, भक्तों के संग में होते हुए कृष्ण भक्ति का अभ्यास हमें करना चाहिए और तभी ये भक्ति विकसित होती है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी अपने लीला से ये वर्णन करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में थे तो चैतन्य महाप्रभु ने निश्चय किया कि अभी मेरे जो पिता का श्राद्ध देना है मुझे, श्राद्ध सेरेमनी के लिए चैतन्य महाप्रभु गया जाते हैं, है ना, गया जाते हैं, वहां भगवान के चरण कमल का दर्शन भी करते हैं विष्णु के, हाँ एक पदी एक चरण कमल है वहां, भगवान विष्णु का एक नाम है एक पदी क्योंकि उनका एक चरण कमल है वहां, तो दर्शन करते हैं। इतना सब करने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु अभी भी उनको वो महसूस नहीं हो रहा था फुल्ली सेटिस्फेक्शन। तो लेकिन जब वहां ईश्वरपुरी को देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार, जत क्षणे देखिला से चरण तुमार, कि गया यात्रा मेरी सफल हो गई, क्यों हो गई, जत क्षणे देखिला से चरण तुमार, आपके चरण मैंने जब देखे इसलिए मेरी यात्रा सफल है, अन्यथा नहीं। तो ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और जो भी वैष्णव आचार्य हैं वो हमें अपने जीवन चरित्र से या अपने एग्जाम्पल से सिखाते हैं कि जब तीर्थों का भ्रमण करते हैं जाते हैं तो उनका उद्देश्य क्या है, कि किसी शुद्ध भक्तों को मिले या भक्तों के संग में हम कृष्ण कथा करें, उस स्थान में जाकर यही हमारा उद्देश्य है। तो इसी प्रकार से जो माधवेंद्र पुरी है उनको देखकर जो नित्यानंद प्रभु है उनको भी इसी प्रकार की स्फूर्ति हो आई और उन्होंने कहा कि मेरा आज जीवन सफल हो गया है, क्योंकि माधवेंद्र पुरी के हृदय में कृष्ण के लिए इतना प्रेम था कि वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, माधवेंद्र कथा अति अद्भुत कथन मेघ देखी ले मात्र हैला अचेतन, कि माधवेंद्र पुरी जैसे रास्ते से चलते थे और आकाश में मेघ देखते थे, मेघ मीन्स बादल, तो वो कृष्ण का स्मरण होकर मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। आप देखो कितना कृष्ण, तो ये शुद्ध भक्त का यह है एक लक्षण है कि जहाँ क्या है कि जहाँ जहाँ देखता है वहाँ कौन स्फुरित होता है, कृष्ण स्फुरित, जहाँ जहाँ दृष्टि जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ तहाँ कृष्ण स्फुरे, चैतन्य चरितमृत कहता है कि जहाँ जहाँ भक्त देखता है वहाँ उसको कृष्ण स्फुरन होता था। हमारे एक महान आचार्य थे जिनका नाम था बंसीदास बाबाजी महाराज, तो ये बंसीदास बाबाजी महाराज जब ट्रेन में बैठने के लिए जाते थे कभी जगन्नाथपुरी जाते समय, तो जब वो ट्रेन का चक्का देखते थे गोल तो उनको जगन्नाथ जी का स्मरण हो जाता था, हाँ तो वो जगन्नाथ जी कह के चिल्लाते थे, हाँ किस चीज़ का चक्का, ट्रेन का गोल होता है, हाँ जगन्नाथ का इसलिए एक नाम है चक्का डोला, क्या है चक्का डोला, पार करे पे चक्का डोला, चक्का डोला का मतलब होता है कि जिनके आँखें किसके समान है, व्हील के समान है, चक्के के समान है। तो बंसीदास बाबा जी महाराज इसका स्मरण होके ट्रेन में मूर्छित हो जाते थे या फिर उनको बड़ा भाव विभोर हो जाते थे जगन्नाथ जी के स्मरण में। तो जैसे क्योंकि जो शुद्ध भक्त है या जिन्होंने ये विकसित किया है जो भावना है वो हर समय देखते हैं कृष्ण को और अनुभव करते हैं इस संसार के हर एक एक्टिविटीज से। जैसे कि मैंने कहा होगा कि ये बंसीदास बाबाजी महाराज के बारे में आता है कि ये एक बार बंगाल में नवदीप में रहते थे, बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश के वहाँ उनका जन्म स्थान था, तो कभी कभी नवदीप आते थे। तो एक बार वो रास्ते से जा रहे थे तो उस समय उन्होंने देखा कि एक हाथी जा रहा था और उस हाथी के ऊपर एक व्यक्ति बैठा था जिसको क्या कहते महावत, ना महावत बैठा था। तो बड़ा हाथी बड़ा आराम से चलता है, जैसे मायापुर में हमारा हाथी भी था इस्कॉन का जिसका नाम था गुलाब कली, तो वो हम जब मायापुर जाते तभी तो शरीर छोड़ा उन्होंने उस हाथी ने, तो गुलाब कली वो घूमती थी मंदिर के सामने ना एक भक्त लेकर उसको, और फिर जो भक्तगण है उसको कभी प्रसाद देते हैं कुछ फ्रूट देते हैं, तो गुलाब कली भक्तों के बीच में घूमती थी और प्रसाद खाती थी या फिर वो प्रसाद अपने वो ब्रह्मचारी वो भक्त के पास देती थी, और इतना भाग्यशाली हाथी था कि राधा माधव जिनके ऊपर सवार होते थे हर शाम को, और राधा माधव की यात्रा निकलती थी उस मंदिर कैंपस में मायापुर। आप सोचो कितना भाग्यशाली वो हाथी है जो स्वयं कृष्ण अपना वाहन चुन रहे हैं उसको। तो आध्यात्मिक जगत का ही वो प्राणी है, बल्कि नवदीप धाम वैसे ही शक्तिशाली। वहाँ चेटी या जो भी प्राणी है वो क्या है, सारे भगवान के नित्य पार्षद है। तो बंसीदास बाबा जी महाराज ने जब उस हाथी को देखा और वो महावत को देखा कि ऊपर बैठा है और लोग रास्ते से जा रहे हैं, किसी के हाथ में केले है, किसी के हाथ में फ्रूट से कुछ कुछ चीजें हैं, तो लोग उस प्रेम से देते हैं ना हाथी को। हमने देखो हाथी को देते हैं तो हर कोई हाथी को केला दे रहा है, कोई कुछ चीज दे रहा है, दे रहा है। तो हाथी क्या कर रहा है, अपने सुंड में लेता था और उसको देता था, किसको, महावत को। तो बंसीदास बाबा जी महाराज देखते थे, उनको उनका कितना उनको रोना आ गया और इतना एम्बेरेस ग्लानी महसूस हुई अपने जीवन पर। वो कहने लगे कि देखो ये जो हाथी है, ये पशु कितना ये है, जेन्युइन है, क्या कह सकते हैं, फेथफुल है कि आपने स्वामी की सेवा कर रहा है। क्या कर रहा है, इज सर्विंग इज मास्टर, वो अपने स्वामी को अच्छी तरह से सेवा कर रहा है, लेकिन मैं अपने स्वामी जो मेरे कृष्ण हैं उनकी सेवा नहीं कर रहा हूँ। तो इनका इतना ये उनको महसूस हुआ, ग्लानी महसूस हो गई, हाँ कि मेरा जीवन तुच्छ है, कि क्या फायदा मेरे ऐसे जीवन का यदि मैं अपने स्वामी की सेवा नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार से जो वैष्णवाज है उनके जीवन चरित्र से हम सीखते हैं कि किस प्रकार से वो हर स्थान में कृष्ण को देखते थे। हाँ, तो इस प्रकार से हम जब भक्तों के द्वारा सुनते हैं, हाँ, तो फिर क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो जिसमें श्रद्धा है उस व्यक्ति को भगवत ज्ञान प्राप्त होता है और विकसित करता है, और फिर उसके आधार पर वो क्या करता है, देखता है। तो भगवान के भक्त आंखों से नहीं देखते कृष्ण को, भगवान के भक्त कहाँ से देखते हैं, कानों से। भागवतम में आता है एक श्लोक जिसमें आता है श्रुत इक्षित पथ, ये शब्द है श्रुत, श्रुत मीन्स कान, इक्षित मीन्स देखता है, और पथ मीन्स रोड, कान के यहाँ से कृष्ण को देखता है। तो भक्त अपने हृदय से कृष्ण को देखता है और हृदय में कृष्ण को स्थापित करता है। तो इसी प्रकार से जो माधवेंद्र पुरी थे, माधवेंद्र पुरी भी जहाँ कभी उनको मेघ नजर आते थे वहां कृष्ण स्फुरित हो जाते थे, क्योंकि कृष्ण का वर्ण कैसा है, श्यामल है ना, घन श्याम, मेघर, मेघ के समान उनका वर्ण है। तो इस प्रकार से माधवेंद्र पुरी ऐसे जो महान आचार्य हैं, हाँ, जिनके बारे में चैतन्य चरितामृत में विशेष रूप से एक चैप्टर ही है मध्य लीला में, जिसका नाम है श्री माधवेंद्र पुरी की भक्ति, हाँ, कि किस प्रकार श्रीपाद माधवेंद्र पुरी अपना सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं, और साथ साथ किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु उनका गुणगान करते हैं, हाँ, उसके बारे में फिर हम कल चर्चा करेंगे, हाँ, समय निकाल कर, जिसमें दो उनकी प्रमुख लीलाएँ आती है कि किस प्रकार माधवेंद्र पुरी गोवर्धन में आए और किस प्रकार अपने जो प्रिय गोपाल है उनके आज्ञा के अनुसार रेमुना चले गए ओडिशा उनके लिए चंदन लाने के लिए। तो कल इन दोनों लीलाओं की चर्चा कर सकते हैं और उन लीलाओं से हम कुछ और भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, कोई कमेंट्स, हाँ, टाइम नहीं है अभी। हाँ, भगवान के भक्त हैं नित्य, तो धाम में प्रभुपाद भी, क्योंकि एक्चुअली ऑर्डिनरी नहीं है जो धाम के जो निवासी हैं, हाँ, भगवान
कोई चार टाइप के निवासी होते हैं, कौन से निवासी हैं, बॉर्न बॉर्न वाले बात कर रहे हैं, कौन सा
एक्चुअली जो वासी होते हैं वो तीन चार प्रकार के आते हैं, मुझे याद नहीं है, ये कुछ होते हैं जो दूसरे स्थान में हैं, हाँ, लेकिन उनका कॉन्शियसनेस वो है, वो भी निवासी कहलाते हैं, हाँ, ब्रजवासी या नवदीपवासी जिन्होंने जन्म लिया है, जो यहाँ वहाँ सर्व कर रहे हैं, हाँ, इस चार तीन चार प्रकार के आते हैं जिनका वर्णन है।
सब प्योर डिवोटीज पे।
हाँ, ऐसे कहा जाता है धाम में जिन्होंने जन्म लिया है और कृष्ण की सेवा में लगे हैं उनका आखिरी ये बर्थ होता है, भगवान के सेवा में जाते हैं वापस। हाँ, जैसे गंगा देवी है ना, तो गंगा जब ये जगत में लाने की चर्चा हो रही थी उनकी, तो गंगा देवी ने कहा कि कैसे आऊँ मैं, हाँ क्योंकि सारे लोग मुझ में स्नान करने आएंगे और अपना पाप छोड़ेंगे, है ना। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपको भगवान ने कहा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे भक्त आएंगे और आपको शुद्ध कर देंगे, उस पाप को, पाप के रिएक्शंस को खत्म कर देंगे। तो गंगा देवी आ जा तैयार हो जाती है आने के लिए। तो इसलिए अल्टीमेट शिक्षा यही है कि भक्तों के एसोसिएशन। इसलिए लॉर्ड चैतन्य कहते हैं साधु संग सर्व सिद्धि है। तो साधु संग का मतलब यह नहीं कि एक जगह रहना, हाँ हम खा पी रहे हैं ये साधु संग, लेकिन भक्तों के नज़दीक होना भी बहुत शक्तिशाली है। हाँ, क्योंकि भक्तों के बीच आप हो तो सुरक्षित हो, जैसे आज मेरे साथ घटना हुई। हाँ, कल रात में काफ़ी लंबा जस्ट पढ़ रहा था लेट तक और सुन रहा था कुछ, तो मधुमंगल जी आए 11:15, उससे पहले मैंने कहा देखो हम दोनों ही हैं और हम दोनों सबसे ज़्यादा सोते हैं, तो मैंने कहा कल हमें कोई भी नहीं उठाने के लिए है, क्योंकि मधुमंगलपुर रोज़ महाराज की सेवा जाते, रात को आते फिर सुबह उठाता उनको ना, तो मैंने कहा देखो आज मैं बहुत थक गया हूँ, कल हम दोनों हैं हमें कोई भी नहीं उठाएगा कल। हाँ, तो मैंने कहा हम दोनों ही सो जाएंगे शायद कल, और फिर हम दोनों सो गए। और सुबह सुबह हमें ना घंटे की आवाज़ आई ना हमारे अलार्म बेल की, तो हमने देखा जब उठे तो 5 बज गए थे। तो आज मैं देखा कि कृष्णा मंगल आरती मिस हो गई। हाँ, तो 5 बजे हम उठे और तुरंत स्नान करके भागे, तो मुझे याद आया कि और भक्त के बीच में होता मैं तो मिस नहीं होता है ना, तो क्या हो जाता, बच जाता है ना, भक्त चाहे नींद भी आ रहे या कुछ भी या किसी भी कारणवश आँख नहीं खुल गई, तो लेकिन भक्त क्या करते, जगा देते प्रभु जी 4:30 हो रहे हैं, है ना। तो ये है हेल्प हमारे, इसलिए कि भक्तों के बीच रहना कितना ये है क्या कहते हैं, सुरक्षा है। हाँ, मैं भी सुरक्षा और ये भी है तपस्या भी है भक्तों के साथ रहना। हाँ, क्योंकि अभक्तों के साथ हम रहते बाहर कोई टेंशन नहीं था, कभी परेशानी थी बाहर अभक्तों के साथ रहने में जब भक्त नहीं थे हम, नहीं, लेकिन जब भक्तों के बीच आते हैं तो भक्ति सिद्धांत मारे के बहुत टफ है डिवोटीज के बीच रहना। क्यों, एक चीज है कि सबसे बड़ा डेंजर है वैष्णव अपराध, जो हमारी भक्ति लता को उखाड़ के फेंक सकती है। हाँ, और बाकी काफी चीजें हैं उसके साथ साथ।
एक हफ्ते में 3 बार बोला कि थोड़ी थकावट रहती है रात को, बहुत थक जाता हूँ,
क्योंकि भक्तों के बीच वो स्पिरिट और एनर्जी शक्ति है ना संग में। ठीक, फिर श्रीपाद माधवेंद्र पुरीपाद के श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री श्री चैतन्य चरितामृत के निदाय गौर प्रेमानंदे।